नमस्कार, मैं उमाशंकर अग्रवाल आप सबका बहुत प्रेम से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम मार्गदर्शन इस समय हम सबके साथ उपस्थित हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विदर्भ सब जोन इंचार्ज आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका बहुत प्रेम से स्वागत है। नमस्कार। इस समय विभिन्न क्षेत्रों से हमारे बीच युगल आए हुए हैं, पति पत्नी यहां पर पधारे हैं, जो ग्रह घर गृहस्थी की समस्याओं को और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम सबके बीच करेंगे। आप सभी युगलों का एक बार फिर बहुत प्रेम से स्वागत है। आप सब लोग यहां पर आए हैं और दीदी जी के पास आए हैं, तो दीदी जी के विषय में हम आपको ये बता दें कि आदरणीय दीदी जी का जीवन समाज सेवा में, समाज के उत्थान के लिए, ब्रह्मा बाबा के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए और परमात्मा शिव क्या है ये बताने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। इतना ही नहीं, जिस तरह हमारा परिवार 5-7 व्यक्तियों का छोटा सा परिवार होता है, उसी तरह उनका भी अपना परिवार है। वे परिवार से भिन्न जरा भी नहीं है, इसलिए वे हमारी समस्याओं को निपुणता से, पूरी कुशलता से समाधान करने में, उन कारणों का निवारण करने में सक्षम है जिन कारणों से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और जीवन में हम लड़खड़ा उठते हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न से, जिसे करने जा रही हैं अमिता सूर्यवंशी जी।
दीदी जी, मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ में रहकर पवित्र रहा जा सकता क्या?
जब हम परिवार की बात करते हैं तो कहा जाता है गृहस्थ आश्रम, तो ये दो चीजों से मिलकर के ये बना है। गृहस्थ भी है, परिवार भी है, आश्रम अर्थात जहां पवित्रता हो, आश्रम अर्थात जहां शांति हो, आश्रम अर्थात जहां पर आपसी प्रेम हो। तो अगर हमारे परिवार के अंदर पवित्रता है, सुख है, शांति है, प्यार है, तो वो ही सच्चा गृहस्थ आश्रम है। आज लक्ष्मी नारायण जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं, तो वो भी वास्तव में युगल ही थे, परंतु उनकी हम पवित्रता का इतना गायन करते जो हम उनके लिए शब्द बोलते हैं, हस्त कमल, नैन कमल, चरण कमल। कमल शब्द की क्यों उपमा देते हैं? उसका कारण है कमल जल में रहते न्यारा रहता। तो ऐसे हम भी गृहस्थी में रहें, कार्य करें, अपनी जिम्मेवारियों को संभालें, परंतु अपनी पवित्रता को हम सहज रीति से कायम रख सकें, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है।
पवित्रता सुख और शांति की जननी है, बहुत ही सुंदर उपमा दी दीदी जी ने। कमल की तरह जल में रहकर निर्लिप्त रहना जल से, ये सीखने के लिए ही हम दीदी जी के पास और आएंगे। दूसरे प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करते हैं नंदकिशोर सूर्यवंशी जी को।
दीदी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य की संवेदनहीनता के कारण क्या है और इन्हें कैसे दूर किया जाए?
जो कोई भी समस्या या कोई भी बात हमारे सामने आती है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ना चाहते हुए भी आता ही है। ये हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, उससे हम छूते नहीं रह सकते हैं। और देखा जाए वो इफेक्ट आना भी वो हमारे मन की कमजोरी है, और उसके साथ हमारी कहां मोह ममता या लोभ लालच, कोई ना कोई विकार उसका असर हमारे ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कि हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं, तो उसमें अपना परिवार का समीप का रिश्ता भी हो सकता है, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, या आम जनता में से भी कोई हो सकता है। समाचार सुनने पर अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है तो बुरा सबको लगता है, वो एक स्वाभाविक है। परंतु अगर हमारे समीप व्यक्ति की ऐसी कुछ बात सुनते हैं तो उसका हमारे मन के ऊपर कितना असर आता है, क्योंकि उसको हमने अपना समझा। कहने में हम कहते हैं भगवान को जो मंजूर है वो ही होता है, पर या फिर हम कोई का जन्म मृत्यु होता है कहते भगवान ने लिया दिया, भगवान ने लिया, परंतु उसके ऊपर हमारा निश्चय नहीं होता है। जिसलिए हमें खुशी और दुख इसका अनुभव होता है। अगर हम भगवान पे छोड़ देते हैं, दिया भी उसने लिया भी उसने, दुख क्यों करें? खुशी का भी असर इतना न हो जब अपने आप से भी परेशानी में आ जाए। इसलिए कहा जाता है बैलेंस, या इस ज्ञान के आधार पर बैलेंस सिखाया जाता है अध्यात्म और परिवार, दोनों का हमारा बैलेंस हो। ये मन की स्थिति है, जहां बैलेंस है वहां हर काम राइट होता है, बैलेंस नहीं तो कभी उस कार्य में राइट हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा तोल कम और नीचे हो जाता है। जैसे ला और लव का बैलेंस, इसी तरह से प्यार, प्यार हो मोह का रूप ना हो वो भी हो, जिम्मेवारियां संभाले पर न्यारे और प्यारे होकर के रहे, कार्य करते साक्षी की दृष्टि हो हमारी, वो स्थिति हो, तो हमारे पर कोई बात का इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि वो जब इफेक्ट आता है उसके रिजल्ट आप सबको मालूम है, तो इसलिए उससे हम साक्षी दृष्टा न्यारा प्यारा ला लव इसका बैलेंस रखे, और हर कार्य में या जो भी बात सामने आती भगवान पर भरोसा रखे, ये है उसकी युक्ति।
ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, कर्म करें किंतु कर्म से लिप्त न हो, अर्थात दीदी जी का सीधा और स्पष्ट संकेत है कि कर्म का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। संवेदना जगे किंतु वो सकारात्मक हो, ये दीदी जी ने हमें संदेश दिया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वैजयंती खेरडे जी से निवेदन है, वे प्रश्न प्रस्तुत करें।
हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर पति पत्नी विभक्त हो जाते हैं तो वो जीवन के अंत में सफलता का अनुभव पा सकते हैं क्या?
सबसे पहली बात है, ऐसा हम कार्य न करें जो हमारे को अलग होना पड़े, चाहे स्थूल रूप में हो जाते चाहे परिवार में दोनों साथ रहे पर बात न करें, वो अपने मन से चले वो अपने मन से चले, ऐसा भी न हो। इसके लिए आवश्यकता दोनों के लिए है कि आपस में एडजस्टमेंट करें, कहां आप उनके विचारों को समझे कहां वो आपके विचारों को समझे। अगर आपसी एडजस्टमेंट नहीं होती है तब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। उसके लिए हमारे को सबसे पहले अपने अपने ईगो को मिटाना होगा। क्यों? जब वो समझते हैं मैं समझदार हूं, मैं पति हूं, पत्नी ने मेरे दबाव में चलना चाहिए, या पत्नी समझती है आज हमको सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हुई हैं तो हम दब करके क्यों चलें? ये भी एक अहंकार है। तो आप जानते हैं अहंकार कहां उत्पन्न होता है? दिमाग में। दिमाग में है अहंकार, दिल में है प्यार, ये दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती है। जब अहंकार आता है तो ऐसे समझिए एक का सिर दूसरे के सिर से टकराता है। अगर सिर से सिर टकराएगा तो दोनों के ही सिर में दर्द होगा, तकलीफ दोनों को होगी और बराबरी की तकलीफ होती है। अगर हम अपने ईगो को छोड़ के दोनों एक दो के विचारों को अंडरस्टैंडिंग करें और अपने दिल से वो भी बात करें और वो भी बात करें, जब अपने अपने दिल से बात करेंगे तो समझने में सहज होगा, और जब दिल से बात करेंगे तो जैसे कहा जाता है दो दिल मिल जाते हैं। जब हम किसी के गले लगते हैं तो वह सबसे पहले दिल मिलता है। तो हम दो दिलों को मिलाना सीखें। दो दिल जब मिलेंगे तो ये दोनों हाथ हमारे मिलकर के कार्य करने में तैयार हो जाएंगे। दोनों के जब हाथ मिलके कार्य करेंगे तो दोनों के पांव एक साथ एक राहों पर चलेंगे। तो जब पैर अलग नहीं हुआ, हाथ अलग नहीं हुआ, जब दिल अलग नहीं हुआ तो कपल क्यों अलग होवे? इसलिए अहंकार छोड़ें, दिल मिलाओ, एडजस्टमेंट पावर रखो, हाथ मिलाओ, पांव मिलकर के एक राहों पर चलो, वो भी श्रेष्ठ राहों पर, तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी।
अहंकार परिवार टूटने का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है, आदरणीय दीदी जी ने हमें ये बताया। ये नहीं होना चाहिए। दिल से दिल मिलाओ और प्रेम की राह बनाओ, आगे बढ़ो। पति पत्नी केवल पति पत्नी नहीं, उनके आगे उनके पीछे परिवार की लंबी श्रृंखला है, वो भी प्रभावित होती है। नहीं होना चाहिए, ये दीदी का कथन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मिलिंद साव जी।
दीदी जी, हम जानना चाहते हैं राजयोग मेडिटेशन और मेडिटेशन में क्या अंतर होता है?
आत्मा का बुद्धि का योग परमात्मा से हो, और इसके लिए यहां पर सबसे पहले आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जब ये इसका पूरा डिटेल हमारे को मिल जाता है तब हमारा ईश्वर प्रभु से संबंध जुड़ जाता है। वो संबंध हमारी बुद्धि को खींच लेता है, मन उधर लगा रहता है, तो हमारे मन का कंट्रोल ईश्वर के हाथ में आ जाता है, जो हमें व्यर्थ को सोचने के लिए ब्रेक लगाता है। परमात्मा भी ब्रेक लगाता और हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में आ जाती है, क्योंकि कहते हैं बैठते तो हैं ईश्वर की याद में, बैठते तो हैं पूजा में, मन हमारा भटक रहा होता, इसलिए वो सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते, शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। पर अगर हम सही मन का योग, मन की लगन परमात्मा से लगाना सीख जाते हैं, फिर कहीं भी बैठे हम लोग योग कर सकते हैं। इसलिए इसको सहज योग भी कहते हैं, राज योग भी कहते हैं और कर्म योग भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है हथ कार ले, हाथों से काम करें और मन में प्रभु की याद।
बहुत प्राचीन कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दीदी जी ने कहा मन चंगा होना चाहिए, मन शुद्ध और चंगा कैसे हो? तो वो परमात्मा शिव से जुड़ने पर होता है। क्या है विधि परमात्मा शिव से जुड़ने की? तो वो है सहज राजयोग, जिसकी मीमांसा आदरणीय दीदी जी ने यहाँ की। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमंत्रित हैं मैथिली करहू।
दीदी जी, मेरा प्रश्न है, यदि जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस न हो तो फिर परमात्मा को जानना, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिकता का अभ्यास करना, इसमें समय नष्ट क्यों करना?
अगर सर्व वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, तो क्या हमारा मन नहीं भटकता है? कोई समस्या आने पर क्या हम विचलित नहीं हो जाते हैं? कोई अगर हमें सुख अपशब्द कह देता है, क्या हमारे दिल को दुख नहीं होता है? जरूर होता है। हम समाज की एक इकाई है, परंतु हम अकेले नहीं जी सकते हैं। बहुत समय होता है जो एक दो के आवश्यकता होती है। स्थूल वस्तु एक बार कुछ कम होगी, परंतु अगर हमें पूरे अड़ोस पड़ोस संबंधी मित्र परिवार का सहयोग है तो हम सफल हैं। हमारा दिल का प्यार उनके साथ है, उनका हमारे साथ है, तो भी हम सफल हैं। दूसरी बात, आज हमारे पास सब कुछ है, परंतु कहा जाता है एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड कौन सा आएगा वो हमें मालूम नहीं है। एक कपल थे, उनकी पत्नी रेगुलर ये ज्ञान का अभ्यास करती थी, पर उसका पति कभी बने भी नहीं करते थे, पर कहते थे मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो कभी आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने की रुचि नहीं रखते थे। पर एक समय ऐसी दुर्घटना उनके उनके उस परिवार में हुई जो उनके जीवन को सबसे बड़ा धक्का लगा। आनंद मौज में रहने वाला व्यक्ति, उस समय उसका रोने के सिवाय कोई काम नहीं था, इतना अंदर चोट लगी। उस समय उसने कहा, आज मुझे आध्यात्मिक ज्ञान सुनाइए, अर्थात उनको इस चीज की आवश्यकता महसूस हुई। तो कहा जाता है जैसे आप अपने बैंक के अंदर पैसा क्यों जमा करते हैं, समय पर काम आएगा। ये भी एक ज्ञान धन है, हमारी पूंजी है, यह आध्यात्मिकता एक पूंजी है, एक शक्ति है। कोई भी समय आने पर हमारे काम आध्यात्मिकता ही आएगी, इसलिए हम इसको जीवन का साथी बनाएं, जीवन का एक अंग बनाइए। और दूसरी चीज, कर्म आगे पीछे के श्रेष्ठता से, पुण्य कर्म से आज आपके पास सब कुछ है, पर भविष्य भी हमारा अच्छा बने, क्या हम कुछ पूंजी जमा कर रहे हैं जो हमारे बाद में काम में आवे? तो इसलिए भविष्य को भी बुद्धि में रखते हुए, न केवल कठिनाइयों के समय की बात है पर जीवन में भी, श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को जमा करिए। जैसे समझिए, कोई कहते हैं अरे जीवन तो बिता लो, जब बूढ़े होंगे ना तब हम ज्ञान ले लेंगे, तब आध्यात्मिकता को अपना लेंगे। परंतु ये ऐसे हुआ, आगे गाड़ी पीछे बैल। तो अगर गाड़ी आगे कर दो बैल पीछे कर दो तो क्या मंजिल पे पहुंचेंगे? सही मंजिल पर चलने के लिए, हमारे कर्म सही हो, उसके लिए आध्यात्मिकता की अत्यंत आवश्यकता है। मन एक जीवन का भाग है। हम तो यहां तक समझते हैं शरीर को जीने के लिए अन्न की जरूरत है, और आत्मा को हमको स्वस्थ रखने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत।
अध्यात्म ज्ञान संसार के सारे ऐश्वर्य, संसार के सभी साधनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना आध्यात्म के श्रेष्ठ कर्म हम शायद नहीं कर पाएंगे, और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जीवन में होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं सुभाष हारोडे।
दीदी जी, आम आदमी को भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है काफी बार, ये तो दुराचार है, लेकिन जैसे मजबूरन भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है तो ये दुराचार है, तो इसको कैसे ये किया जाए?
मजबूरी भी वास्तव में नहीं होती, वो हमारे मन की कमजोरी होती है। हमने अपना वो मन बना लिया है कि ये करना ही पड़ेगा, परंतु जिसके जीवन के अंदर अगर भ्रष्टाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, या जितनी भी ऐसी बुराइयां अगर किसके जीवन में हैं, व्यसन है, विकार है, क्या वो सबकी नजरों में महान रह सकता है? सबके दिलों का रिगार्ड पा सकता है? सबके दिलों से प्यार उसके लिए निकल सकता है? कहा जाता है बुराई तो बुराई। जैसे हमें मालूम है आग में जलने से कष्ट अपने को ही होने वाला है, पर क्या हम ये कहते हैं अरे अगर वो आग में जल रहा मैं भी जल के देखूं? कभी हम ऐसे ट्राई करते? कई कहते वातावरण ही ऐसा है तो हमको भी करना पड़ता है, परंतु जैसे बताया आग हानिकारक है, पानी में डूबना हानिकारक है, पहाड़ से नीचे गिरना हानिकारक है, इसलिए वो बातों से हम अपने आप को संभालते हैं, वो हम ट्राई करने नहीं जाते, हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जब हम औरों के लिए कर देख रहे हैं, कहते हैं समाज का नक्शा बदल गया है, ये है, तो उसको बढ़ावा देने में हम क्यों सहयोगी बनते हैं? बढ़ावा देना भी नुकसान करना। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो जो आज जितना फिर भी कुछ अच्छाई के कारण टिका हुआ है समाज, वो तो और भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो गलत ख्याल मेरे अंदर भी आए, आपके अंदर भी आए। लोभ वृत्ति उनमें है, मेरे में भी आ गई, बेईमानी उनके मन में मेरे में आ गई, तो आखिर रिजल्ट क्या होगी? एक और एक राजा ने प्रजा के मन को जानने के लिए एक तालाब बनवाया, टैंक बनवाया, और सबको बोला रात के अंधेरे समय में एक एक लोटा दूध का डालिए, क्योंकि सवेरे पूजा होनी है। एक के मन में कुविचार आ गया, अरे सारे दूध डालेंगे, मैं पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किसको दिखाई थोड़ी पड़ेगा। ऐसा विचार का वो वाइब्रेशन हुआ जो सबने पानी डाल दिया, दूध की टैंक भरने के बजाय पानी की हो गई। बुराई में कभी किसी की भलाई हो नहीं सकती, इसलिए मजबूरी होकर के नहीं करिए, पर उसमें से कुछ अच्छाई का मार्ग निकालिए ताकि आपसे दूसरे भी सीखे, अच्छाई के मार्ग पर चलने की औरों को भी प्रेरणा मिले।
भ्रष्टाचार किन्हीं भी परिस्थितियों में, कैसी भी विवशता में कभी उचित नहीं कहा जा सकता, और भ्रष्टाचार के जो परिणाम अंततः समाज को भुगतने पड़ते हैं वो कदापि अच्छे नहीं होते। हमारी दीदी जी ने ये हमसे कहा। श्री राजेश जायसवाल, कृपया प्रश्न करें।
दीदी, मेरा प्रश्न है कि भाग्य द्वारा हमारा कर्म निर्धारित होता है या कर्म द्वारा हमारा भाग्य निर्धारित होता है?
कहा जाता है पहले कर्म, कर्म के आधार पर भाग्य बनता है, इसलिए कहते हैं भाग्य भाग्य को बुद्धि में रखते हुए अपने कर्मों को अर्थात पुरुषार्थ को न छोड़े। भोजन में खाना पड़ता है तब हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। मैं सोचूं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो कभी मेरा पेट नहीं भरेगा। इसलिए कर्म पहले, और कर्म से दूर नहीं भागना चाहिए, उसके लिए सदा अटेंशन हो करके हम कर्म करें। पर कर्म कौन से? श्रेष्ठ कर्म,
जिसे कहते हैं भाग्य या कहते हैं प्रारब्ध। दीदी जी ने कहा वो कर्मों से बनते हैं, भाग्य से कर्म नहीं, कर्म से भाग्य बनते हैं। और हमें श्रेष्ठ कर्मों का ही सदा सहारा लेना चाहिए। ज्योति चिठोरे जी,
दीदी जी हमारे देश में वर्तमान समय में अभी काफी सत्संग कार्यरत है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कौन सा सत्संग यथार्थ है या लाभदायक है।
तो जो सत्य के राह पर चलते वो सत्संग में रहते। तो जो रहा हमें सत्य के मार्ग पर ले जाए, हमको गाइड करे, अगर कोई कठिनाई आए उसको मदद करने में सहयोगी बने, वो हमें मार्ग अपनाना चाहिए। सुने, सुन को जीवन में धारण करें। जब जीवन में धारण करते कुसंग से हमको सदा अपने आप को सावधान रखते हैं। वो सावधानी बहुत हमारे काम आती है, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो आपस में ये कनेक्शन है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, साथ ही आदरणीय दीदी जी, आपके प्रति मैं अत्यंत नम्रता से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने हम सबके प्रश्नों का समाधान किया है। और इसके साथ ही हम आपसे अनुमति चाहते हैं अगले ऐसे ही किसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।